लघु वासुदेव मननम के अंतर्गत ये विचार चल रहा है कि अध्यारोप और अपवाद के द्वारा जब ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाए तो उससे चार प्रकार के पुरुषार्थों में जो मोक्ष नामक परम पुरुषार्थ है उसकी प्राप्ति हो जाती है। अध्यारोप का क्या स्वरूप है, इसी क्रम में यहां तक विचार हुआ मूल प्रकृति आदि क्या चीज है। आप लोग कई बार सुने हो अज्ञान की दो शक्ति है, आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति। इन दोनों शक्तियों में शक्ति जो नाम जोड़ा है ना, इसका मतलब ये कुछ करती है, कुछ ताकत है इसमें। और वह क्या शक्ति है, क्या ताकत है? विक्षेप शक्ति मोक्ष सिद्धि के हेतु है और आवरण शक्ति ही बंधन में डालने वाली है। अर्थात आवरण शक्ति अनर्थ के कारण है और विक्षेप शक्ति से ही हमारा प्रयोजन सिद्ध होता है। विक्षेप शक्ति के अंतर्गत विशुद्ध सत्व प्रधान माया वाले जो ईश्वर हैं, मलिन सत्व प्रधान वाले जीव, ये कारण सृष्टि का नाम है। कारण सृष्टि का वर्णन किया इसके द्वारा, अब सूक्ष्म सृष्टि का विचार होने जा रहा है जिसको हम सूक्ष्म शरीर आदि कहते हैं। अज्ञान के बाद ही आकाश आदि उत्पन्न हुए। आकाश वायु तेज जल पृथ्वी आदि के कारण है अज्ञान, इसलिए आकाश आदि में भी अज्ञानता है, क्योंकि कारण के गुण धर्म कार्यों में आते हैं। अज्ञान से उत्पन्न होने के कारण आकाश आदि जब अज्ञान हुए, अज्ञान मतलब जड़, उससे उत्पन्न होने वाले पंचभूतात्मक हम लोगों का शरीर, ये भी क्या होगा? जड़ी होगा। इसमें भी, इस जड़ता में भी चेतन के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। तो विक्षेप शक्ति का मतलब होता है प्रमेय, अर्थात बाहर के वस्तुओं का जो ज्ञान न होना, और आवरण शक्ति का मतलब होता है प्रमाता का ज्ञान न होना, अपने आप का ज्ञान न होना। ये आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति का स्वरूप है। आगे इसका और भी विस्तार से विचार होगा, अभी मूल रूप से इसको ध्यान में रखेंगे तो समझने में आसानी होगी। अथ सूक्ष्म प्रपंच सृष्टि उच्यते। आचार्य वासुदेव यति सूक्ष्म सृष्टि के स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। ईश्वरस्य इक्षण वसात, वह जो विशुद्ध माया वाले ईश्वर ने इक्षण किया, इक्षण होते ही उसके मन में तमोगुण रूपा प्रकृति ही, जो तमोगुण प्रधान प्रकृति है ना, जिसके द्वारा इस संसार की रचना होनी है, तमोगुण रूपा प्रकृति का नाम ही है आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति इति द्विविधा जाता। किससे हुआ? तमह प्रधान प्रकृति के द्वारा आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति प्रकट हो गई। विक्षेप शक्ति से ही सूक्ष्म आकाश की उत्पत्ति हुई। सूक्ष्म आकाश का मतलब अपंचीकृत पंच महाभूत जिसको बोलते हैं हम लोग। पंचीकृत का मतलब होता है स्थूलकृत, स्थूल हो गया, और अपंचीकृत का मतलब होता है सूक्ष्म। अभी पंचीकरण नहीं हुआ है। तत्र विक्षेप शक्ति एव सूक्ष्म आकाशो अभवत। ईश्वर की जो तमोगुण प्रधान प्रकृति है उसी का नाम है मूला विद्या। या अज्ञान कहते हैं जिसको। मूला विद्या तूला विद्या का नाम सुना है ना, यही है वो। इसमें क्या होती है, चित छाया पत्ती, उस चेतन के छाया का जो प्रभाव पड़ता है वह तमो गुण प्रधान प्रकृति में, जिसका नाम है मूला विद्या अज्ञान, अर्थात जिसमें चैतन्य प्रतिफलित होता है और यही जगत का उपादान कारण बनती है, जिसमें ईश्वर का ईक्षण, ईक्षण का मतलब है यहां पर ई में बड़ा ईकार है, ईक्षण, ईक्षण का मतलब जगत के सृजना करने की इच्छा, जगत बनाने की इच्छा हुई। तो ये जो तमोगुण प्रधान माया विक्षेप शक्ति का कार्य करती है, और ये आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति, तो विक्षेप शक्ति में ब्रह्मांड से लेकर स्थावर पर्यंत ये सब के सब विक्षेप शक्ति का स्वरूप है, हम सब इसी में आते हैं। लेकिन विक्षेप के अंदर प्रधानता जिसकी वो है चेतन रूप प्रमाता, उसका अभी हमें ज्ञान नहीं है, इसलिए आवरण शक्ति जो है आवरण रूपी अज्ञान, ये भी दो प्रकार का होता है, अभान आपादक और असत्व आपादक, इसको असत्वापादक और अभानापादक बोलते हैं। एक में होता है वस्तु नास्ति, इसका नाम है असत्वापादक, और ब्रह्म में न भाति, मुझे ब्रह्म है ये पता नहीं चल रहा है, ये अभानापादक है, ये सब आगे आएगा। वेदांत की प्रक्रिया है, ये सब एकदम समझ में आ जाए ना तो फिर आप कुछ भी कथा प्रवचन सुनते रहो, आनंद लो। लेकिन पहले कस्त्वम को हम कुता आयात, शुरू में बात चली थी जन्म लिया है मरना तो पड़ेगा ही, अब तो ये प्रयास करना है कि दोबारा जन्म ना लेना पड़े। जवानी में चाहे क्विंटल भर का भी वजन अपना क्यों ना हो, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब 60-70 के बाद अपना वजन कितना कष्ट देता है, फिर चाहे हल्का शरीर भी क्यों ना हो, घुटने आदि जब जवाब देते हैं, अभी वही बात चल रही थी ना, पानी भी पीना हो कोई देगा तो पी सकते हैं, बाथरूम कोई उठा के ले जाएगा पकड़ के तो जा सकते हैं, उस समय लगता है कि हे प्रभु जल्दी से उठा लो, और अभी तो ऐसा लगता है कि सब भले ही उठ जाए हम तो बने रहे, यही है भगवान की माया। तत्र विक्षेप शक्ति एव सूक्ष्म आकाशो अभवत, तो जैसे रस्सी में विक्षेप के कारण ही सर्प आदि की उत्पत्ति हो जाती है, उसी प्रकार से विक्षेप शक्ति के द्वारा उस निष्प्रपंच आत्मा में सप्रपंच अनात्मा की प्रतीति होने लगती है, अर्थात वस्तु के ज्ञान न होने से अवस्तु के सत्ता प्रबल हो जाती है, रस्सी के ज्ञान न होने से सर्प जैसे वहां पर प्रबल होता है। इसमें कारण क्या है, इसी को बोलते हैं विक्षेप शक्ति। ये दृष्टांत है, इससे आगे समझ में आएगा कि सूक्ष्म सृष्टि में क्या क्या हुआ। आवरण शक्ति प्रमाता के ज्ञान को ढक देती है, जिस प्रकार अज्ञान ने रज्जु विषयक ज्ञान को ढक दिया, इसी प्रकार सच्चिदानंद ही सब कुछ है जानते हुए भी आवरण शक्ति इस ज्ञान के ऊपर पर्दा डाल देती है। इसलिए जब जब श्रवण करते हैं कथा आदि में, स्वाध्याय में, श्रवण का नाम ही परोक्ष ज्ञान है, परोक्ष ज्ञान कही और श्रवण की एक ही बात है, आपाततः पता चलता है कुछ है लेकिन अभी वो अपरोक्ष नहीं है, इसलिए आगे मनन निधि ध्यासन आदि की बात कही है। श्रवण करना पढ़ना ये सब एक ही स्थिति में आता है, तभी अर्जुन ने जो प्रश्न किया ना कि स्थिर प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव, समाधिस्थ और स्थित प्रज्ञ दो नाम क्यों लिया, कि समाधिस्थ में रहने वाला व्यक्ति स्थित प्रज्ञ से अलग ही होगा, अर्थात स्थित प्रज्ञ होते हुए और असमाधिस्थ होगा, अर्थात भगवान जो कह रहे गीता के 18वें अध्याय में अध्येष्यति च य इमं धर्म्यं संवाद मावयो, ये जो गीता रूपी जो उपदेश दिया हमने इसका जो भी अध्ययन करेंगे तो अध्ययन करने वाला कौन होगा? समाधि लगाएगा तो अध्ययन नहीं करेगा, अध्ययन करेगा तो समाधि नहीं लगाएगा, तो क्या उन दोनों में फर्क है? बोले कुछ फर्क नहीं है। यहां तक कहा जाता है अपने आत्मकल्याण के पीछे दूसरे को अनात्मा में ढकेलना, ये भी तो महापाप है। लोग क्या समझते हैं कि यदि मैं कोई जिम्मेवारी लूंगा, कुछ कर्म बन जाएगा, बंधन का हेतु बनेगा तो मोक्ष नहीं मिलेगा, इसलिए वो सारी जिम्मेवारियों से भागते हैं। कदाचित आपके जिम्मेवारी ले लेने से कई लोगों को लाभ मिलेगा, स्वाध्याय प्रवचन सुनने करने को मिलेगा, तो इससे आपके मोक्ष में कोई कमी तो नहीं आएगी। लेकिन कई बार इसको लोग गलत ढंग से व्याख्या करते या समझते हैं। इसमें हम अपने महापुरुषों को भी देखते हैं, कईयों को वो सोचते हैं कि कहीं कोई जिम्मेवारी ले लिया, किसी को कुछ बोल दिया तो हमारे मोक्ष में कोई आपत्ति ना आ जाए। अपने को मोक्ष प्राप्त करने के लिए, मुक्त करने के लिए दूसरे को बंधन में जकड़ के रखना, ये भी तो महादोष है। इसलिए अभी श्रावण का महीना चल रहा है, रुद्राष्टाध्यायी में आता है कि चाहे भगवान शंकर के बारे में बोल करके आपको कोई गाली भी देवे, चिंता मत करो, शिव जी के बारे में बताया, कोई गाली देता है देने दो, भगवान शंकर हैं देखने वाले, उसको भी सद्बुद्धि देंगे। हम सोचते हैं कि प्रचार प्रसार भी हो, भगवान की भक्ति भी हो, लेकिन अपनी इज्जत सुरक्षित रहे, इसमें कोई दाग नहीं लगना चाहिए। ये जो अपना पराया का भाव आता है, ये भी एक अज्ञान का ही तो स्वरूप है। जब सब हम सब एक ही है, कभी ऐसा आता है कि नहीं आता मन में, हम सब एक ही है? लेकिन यही बार बार माया जो है ना, हमारे उस ज्ञान के ऊपर पर्दा डाल करके और बार बार ये अनुभव कराती है कि हम एक कैसे हो सकते हैं, एक हैं, एक ही हैं, सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं, लेकिन तुरंत औपाधिक भेद आ जाता है, अर्थात औपाधिक भेद की ही प्रबलता बनी रहती है। तो जो सूक्ष्म आकाश उत्पन्न हुआ, अब इससे एक पूरा ये जो क्रम है श्रुतियों में आप लोगों ने सुनी रखा है, आकाशाद वायु, वायु अग्नि, अग्रे आपो, अद्भ्य पृथ्वी, आकाश से वायु, वायु से तेज, तेज से जल, जल से पृथ्वी, पृथ्वी के कारण जल है, जल के कारण तेज है, तेज के कारण वायु है, वायु के कारण आकाश है, और आकाश के कारण कौन है? यही जो अज्ञान की विक्षेप शक्ति अर्थात अज्ञान कह सकते हैं। एतेषां पंचभूतानां सूक्ष्म भूतानि, ये जो पांच महाभूतों का नाम लिया, जो सूक्ष्म भूत हैं, ये अपंचीकृतानि होने के कारण अन्य शास्त्रों में इसको तन्मात्रा के नाम से कहा गया। अपंचीकृत पंच महाभूत कहिए अथवा सूक्ष्म महाभूत कहिए अथवा पंच तन्मात्रा कहिए, एक ही बात है, कोई उसमें फर्क नहीं पड़ता। तन्मात्राणि च इति नामो, एतेषाम अपि, ये जो पांच गुण है ना, पांच भूत, आकाश वायु तेज जल पृथ्वी, तो अज्ञान के कार्य होने से अज्ञान का जो स्वभाव है ये स्वभाव इसमें भी आया। अब अज्ञान कैसा है? तो त्रिगुणात्मक है, सत्व रज और तमो गुण को मिला करके रस्सी की तरह बट करके ये तो हमें बंधन में डाल रहा है। इसलिए आकाश वायु तेज जल पृथ्वी में भी तीनों गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, क्योंकि अज्ञान की संतान है, अज्ञान की कार्य है, अज्ञान इनका कारण है। इसलिए कह दिया एतेषाम अपि सत्व रजस तमोगुणा कारणाद अज्ञानाद, इन पांच भूतों का कारण जो अज्ञान है और अज्ञान में जो तीन गुण हैं, यही तीनों गुण इन पांच भूतों में भी आ गए और पांच भूतों के बने हुए हम लोगों में भी आ गए, इसलिए हम लोग इन तीनों का अनुभव करते हैं दिन रात। एतेषाम आकाशादीनाम पृथक पृथक सत्वगुणा गुणांशात श्रोत्रम त्वक चक्षुर जिह्वा घ्राणम इति पंच ज्ञानेन्द्रियाणि क्रमेण जातानी। ये तो आप सब जानते हो, आकाश वायु तेज जल पृथ्वी अज्ञान के अंश जो सत्व अंश है, उस प्रत्येक सत्व अंश से, आकाश के सत्व अंश से श्रोत्र उत्पन्न हुआ, वायु के सत्व अंश से त्वचा, तेज के सत्व अंश से नेत्र चक्षु, जल के सत्व अंश से जिह्वा, पृथ्वी के सत्व अंश से घ्राण नाक। बहुत सरल है, जब सुनते तो लगता है सबको मालूम है, जब पूछे कभी टाई टाई फीस हो जाते। आकाश वायु तेज जल पृथ्वी के सत्व अंश से कान त्वचा आंख जिह्वा नाक, ये पांच सात्विक अंश से उत्पन्न हुए, आकाश आदि पांच भूतों के क्रम से उत्पन्न होते हैं, आगे पीछे नहीं होते ये सब, और इन्हीं पांच भूतों के मिले हुए सत्व अंश से अंतःकरणम जातम, पांच भूतों के मिले हुए सत्व अंश से अंतःकरण उत्पन्न हुआ। बाहर का करण है ये, इसलिए बहिकरण भी कहते हैं इसको, और ये अंदर है इसलिए इसका नाम रख दिया अंतःकरण। ये अंतःकरण भी मन बुद्धि चित्त अहंकार के नाम से चार प्रकार का भेद किया। कई जगह दो ही बोलते हैं, मन बुद्धि, और कई जगह चारों का नाम लेते हैं। तो मन और बुद्धि में चित्त और अहंकार का अंतर्भाव कर दिया जाता है, तब दो नाम ले लेते हैं, अलग अलग नाम गिनाते हैं तब चारों नाम लेते हैं। बुद्धि में अहंकार का अंतर्भाव हो गया और मन में चित्त का अंतर्भाव कर दिया गया, तो दो नाम लेने से भी काम चल सकता है। इसीलिए आकाश आदि पांच भूतों के मिले हुए सत्व अंश से जो हमारा मन, क्या कहते हैं कि भाई हमारा मन बहुत शांत है, मैं बहुत परेशान हूं कि मेरा मन शांत क्यों है, ऐसा कोई बोलता है क्या? आप लोगों को उठाने के लिए बोलना पड़ता, नहीं तो आप यही कह दोगे हाँ शांत क्यों है। अब जब ऐसा बोला सबकी आंखें खुल गई, क्या बोल रहे। लेकिन जब मन अशांत हो तब जरूर प्रश्न उठता है कि मेरा मन अशांत क्यों है। सुबह से लेकर शाम तक हम लोग चाहते हैं कि मन में शांति बनी रहे, नहीं तो विनोद की बात करते हैं लोग। प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो, तो किसी ने उसका भेद कर दिया, सद्भाव ना हो, अलग कर दो, इतनी से तो बात है। तो मन को शांत रखने के लिए प्रातः काल से लेके सायंकाल, और जब से हम लोगों ने होश संभाला है तब से लेकर, और जब तक अपने हाथ में कंट्रोल है तब तक चाहते हैं कि कोई हमें विक्षिप्त न करे, अशांत न करे। क्यों? क्योंकि यह मन का स्वभाव है, पांच भूतों के सत्व अंश से उत्पन्न होने के कारण, और मन का स्वामी चंद्रमा मनसो जातः, ये जो चंद्रमा है इससे मन की उत्पत्ति मानी गई, चंद्रमा में शीतलता है, इसलिए बोलते मेरा मन ठंडा है, तो बोलते दिमाग शांत रखो, तो वहां मन को ही लेकर के बोलते हैं, यदि मन में विक्षेप होगा तो दिमाग कहां ठंडा होगा। और ऐसे चंद्रमा को भगवान शंकर ने मस्तक पर धारण कर रखा है, श्रावण का महीना चल रहा है, क्या बोलते हैं द्वितीया के चांद। तो इसमें प्रश्न उठता है कि शिव जी ने अपने मस्तक पर इतने छोटे चंद्रमा को क्यों रखा? पूर्णिमा के चंद्रमा अच्छा होता है कि द्वितीया का? सच बोलना, पूर्णिमा का। तो शंकर जी तो हम लोगों से ज्यादा समझदार हैं, उन्होंने फिर ऐसा क्यों नहीं किया, द्वितीया के चंद्रमा को धारण किया, पूर्णिमा का चंद्रमा रखना चाहिए ना। तो इसमें कुछ कारण तो होगा। अब फिर आप पलट जाओगे, कहोगे हाँ यही ठीक होगा। पूर्णिमा में जो चंद्रमा है बड़ा है और ये मन का प्रतीक है। मन मोटा होना चाहिए कि पतला होना चाहिए? पूर्णिमा वाला मन हो कि द्वितीया वाला? शंकर जी द्वितीया के चंद्रमा को रख के ये बताते हैं कि जिसका मन अत्यंत सूक्ष्म है वही मेरे मस्तक पर बैठने के योग्य है। जिसके मन में पूर्णिमा की तरह अभी स्थूलता है, जिसका मन मोटा है, वह अभी हमारे मस्तक पर नहीं बैठ सकता। तो सप्त अंश से उत्पन्न हुआ हुआ जो यह मन द्वितीया के चंद्रमा के द्वारा धारण करके शिवजी ने बता दिया कि सूक्ष्म पंच महाभूतों के सत्व अंश से उत्पन्न हुआ यह मन कितना सूक्ष्म होना चाहिए। दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी ऐसा आता है। तो ये सूक्ष्म परमात्मा को जानने के लिए, पहचानने के लिए हमारा मन भी क्या होना चाहिए? सूक्ष्म होना चाहिए। अभी हम व्यवहार करते करते हम लोगों का मन इतना मोटा हो चुका है और ऐसे स्थूल मन के द्वारा सूक्ष्म वस्तु को जानना मुश्किल हो रहा है। तो मन जो है उत्पन्न होकर के और उसके फिर वृत्ति भेद हो जाएंगे। एक ही व्यक्ति जब भोजन पकाएगा तो उसका नाम पाचक होता है, यज्ञ कराएगा तो याजक नाम होता है, पढ़ता है या पढ़ाता है तो पाठक नाम होता है। इसी प्रकार से जब मन संकल्प करता है, संशय करता है, उसका नाम मन पड़ गया। जब वह चिंतन करता है तो चित्त नाम पड़ गया। जब गर्व करता है तो उसी का अहंकार नाम पड़ जाता है। और जब वह निश्चय करता है तो उसी को बुद्धि कह देते हैं। तो मन बुद्धि चित्त अहंकार बात एक ही है, लेकिन कार्यों के भेद से इनके नामों का भी भेद हो जाता है। एवं आकाश आदि रजोगुणात्। अब आकाश वायु तेज जल पृथ्वी के सत्व अंश से जैसे ये पांच ज्ञान इंद्रियां उत्पन्न हुई और मिले हुए सत्व अंश से मन उत्पन्न हुआ, उसी प्रकार से रजो अंश से एक एक करके कर्मेंद्रियां उत्पन्न हुई। वाणी, वाक, पाणी, हाथ, पाद, पैर और मल मूत्र का जो द्वार है उपस्थ और पायु, ये पांच कर्म इंद्रियां आकाश आदि के रजो अंश से उत्पन्न हुए। ये तो आप लोग बहुत बार सुने हुए नहीं? और इन सब के देवता कौन कौन है? सभी के देवता भी अलग अलग है और उन सभी का देवता महादेवता हम स्वयं हैं। और क्या, यदि इसमें चेतन न हो तो देवता भी क्या करेंगे? को देव यो मन साक्षी। कौन से देव है? एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूतादिवास साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। जिसका नाम अव्याकृत, अंतर्यामी आदि नाम कल बताया था। तो पांच कर्म इंद्रियों का नाम भी हम लोग जानते हैं, उनके कार्य भी जानते हैं, उनके देवताओं को भी जानते हैं। इतना ध्यान रखना है, जब जब कर्म होगा तब तब रजोगुण की प्रधानता ही रहती है। और जब हम केवल जानते हैं, ज्ञानेन्द्रियों का व्यवहार होता है, उस समय हमारे अंदर सात्विक वृत्ति प्रबल रहती है। सत्वगुण में ज्ञानेन्द्रियां प्रबल होती है और रजोगुण की अधिकता में कर्मेन्द्रियों में प्रबलता रहती है। उन्हीं पांच भूतों के मिले हुए रजो अंश से प्राण उत्पन्न हुआ। सत्व अंश से मन मिले हुए और इसी तरह से रजोगुण से मिले हुए प्राण उत्पन्न हुआ पांच भूतों के द्वारा। एवं आकाशादि रजोगुणात् वाक् पाणी पादोपस्थपायव इति पंच कर्मेन्द्रियाणि जातानि। आकाशादि रजोगुण समष्ट्या, समष्टि जोड़ सकते हैं, रजोगुण के समष्टि है प्राण, सत्वगुण के समष्टि है मन, प्राणो जात सच प्राण अपान व्यान उदान समान भेदेन पंचविध। एक ही प्राण भी कार्य के भेद से पांच नाम पड़ गया, इसलिए प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, पंच प्राणेभ्य स्वाहा। पूजा में भगवान को भोग लगाते समय ग्रास मुद्रया और ये जो है ताली त्रयम कुर्यात पुनः आचमनीयम, ये पूजा करते समय करते हैं। हमारा पूजा करने का तरीका भी तो अध्यात्म से ही जुड़ा है ना, तो पांच बार ये नाम ले लेते हैं। हमारे शरीर में हृदय प्राणो गुदे अपान समानो नाभिमंडले उदान कंठ देशस्थ हो और व्यान सर्व शरीर ग, फिर उसमें पंच उप प्राण भी है नाग कूर्म क्रिकल देवदत्त और धनंजय, इन्हीं से हम लोगों का ये पूरा शरीर का जो व्यापार है सब कुछ चल रहा है। लेकिन एकमात्र प्राण ही है, उसके कार्य भेद से अलग अलग नाम पड़ जाते हैं। जब हम दौड़ते हैं तब भी प्राण शक्ति की आवश्यकता पड़ती है, तो ये रजोगुण के मिले हुए सत्व अंश से उत्पन्न हुआ। एतद् ज्ञानेन्द्रिय पंचकम कर्मेन्द्रिय पंचकम प्राण पंचकम मनोबुद्धिश्च, कितने हो गए 17, इसको मिलाकर के सप्तदशात्मकम सूक्ष्म शरीरम लिंगाख्यम उच्यते। इसी को लिंग शरीर बोलते, इसी को सूक्ष्म शरीर बोलते हैं, जिसमें 17 तत्व माने गए, पांच कर्मेंद्रिया, पांच ज्ञानेन्द्रिया, पंच प्राण मन और बुद्धि। मांडुक उपनिषद में एकोन विंशति कह देते हैं, तो वही चित्त और अहंकार को अलग से गिनाते हैं, इसीलिए तो 19 तत्व भी कह सकते हो। इदम एव भोग साधनम, अब जिस स्थूल शरीर के द्वारा भोगों का साक्षात्कार होना है, तो स्थूल शरीर तो बाहर से दिख रहा है, लेकिन इसके अंदर जो सूक्ष्म शरीर है, इन्हीं से हम लोग भोग आदि का निष्पन्न करते हैं, भोगों को भोगते हैं। स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर की आवश्यकता क्यों है, जिसके लिए आचार्य यहां बता रहे हैं। अस्मिन् सूक्ष्म शरीरे, ये जो सप्तदशात्मक 17 तत्व वाला जो ये लिंग शरीर सूक्ष्म शरीर है, इसमें जीव और ईश्वर दोनों जिस समय रहते हैं, रहते तो हमेशा ही हैं, लेकिन खास करके स्वप्न काल में जब हम सो जाते हैं, उस समय जीव और ईश्वर की जो अवस्थिति है, इसी का नाम है स्वप्न अवस्था। इसका नाम हो गया स्वप्न, सपना देखना। और सामान्यतया पंचदशी आदि में जो लक्षण किया है, तो इंद्रिय अर्थोपलब्धि जागरितम, इंद्रियों के द्वारा विषय की उपलब्धि जब होवे तब तो नाम है जागृत अवस्था। लेकिन कर्णेषु उपसंहृतेषु, इंद्रिया तो शांत है लेकिन जागृत अवस्था के संस्कार उत्पन्न होते हैं जिस समय, उसका नाम है स्वप्न। और सुषुप्ति अवस्था में तो नाहम किंचित अवेदिशम, जिसका कल नाम बता दिया था, आनंदमय कोश जतु पिंड के अंदर सुवर्ण रेणु के समान वह जीव जिस समय अपने वासना रूपी लाख के अंदर वह जीव सुवर्ण कण के समान चिपका रहता है, लेकिन जगते ही वह लाख पिघलने के बाद फिर हम लोग ये जागृत आदि के व्यवहार में आकर अपने प्रारब्ध अनुसार भोगों को भोगते हैं। अस्मिन् सूक्ष्म शरीरे जीवेश्वरयोः अवस्थिति स्वप्नावस्था। अस्मिन् इसमें कौन कौन से कोष है, तो आनंदमय कोष सुषुप्ति अवस्था में, और स्वप्न अवस्था में विज्ञानमय कोष, मनोमय कोष और प्राणमय कोष, तीन रहते हैं। इसका नाम हो गया सूक्ष्म सृष्टि। स्थूल सृष्टि भी आप सब जानते हो, फिर भी थोड़ा विचार कर लेते हैं, यहां पर और भी कुछ बात बताएंगे। तमोगुण प्रधानानि, रजोगुण प्रधान है सूक्ष्म सृष्टि, तो स्थूल सृष्टि में किसकी प्रधानता है? तमोगुण की प्रधानता है। अपंचीकृतानी आकाशादानी आकाशादीनी, अपंचीकृत पंच महाभूत जो आकाश वायु तेज जल पृथ्वी हैं, उसके एक एक अंश से एक एक इंद्रिया उत्पन्न हुई, उसी के मिले हुए अंश से मन प्राण आदि उत्पन्न हुए, ये तो आप लोगों ने अभी अभी श्रवण किया। अब द्विधा विधाय चैकैकम चतुर्धा पंचदशी में आता है, आकाश वायु तेज जल पृथ्वी को आधा आधा करो। कहां करोगे? प्रेमपुरी में बैठ के। ये समझने की एक प्रक्रिया है। आकाश का आधा हिस्सा एक तरफ और आधे जो हिस्सा था उसको चार भाग करो, तो पांचों के आधा हिस्सा एक तरफ और पांचों के आधे का चार चार हिस्सा, तो कितने बन गए? 25। 25 ही बनेंगे ना भाई। पांच के जो आधा था उन सभी आधाओं का चार चार भाग किया, और जो आधा था पांचों का उसको एक साइड में रखा, तो पांच आधे आधे हो गए और पांच आधे आधे का 20 हो गया, पांचों का 20, तो मिला के कितने बन गए? 25। हम लोगों के शरीर में कितने तत्व हैं? स्थूल शरीर में 25 तत्व हैं। इतना तो जरूर है, अज्ञान है मूल कारण, इसलिए इस शरीर में जड़ता आदि बनी हुई है। मन भी जड़, बुद्धि भी जड़, सब जड़ है, लेकिन इसमें कुछ योग्यता विशेष है। बुद्धि के अंदर चेतन का प्रकाश पड़ता है, मन में वृत्ति बनती है, लेकिन बाकी इंद्रियों से हम केवल जानते तो हैं, लेकिन वृत्ति तो मन में ही बनती है। हाथ पैर से करते तो हैं प्राण शक्ति के द्वारा, लेकिन उससे भी प्राण बंधनम ही सौम्य मना, हे सौम्य, यह जो मन है प्राण से बंधा हुआ है। अर्थात प्राण शक्ति आदि से जो हम करते हैं तो सब कहां असर पड़ता है? मन में ही आता है। लेकिन मन भी जब जड़ है तो कौन बता रहा है, किसके द्वारा मालूम पड़ रहा है? तो जो इसमें एक देव बैठे हुए हैं, चित प्रतिबिंब, जिसको लेकर के सारा व्यवहार चलता है। तमोगुण प्रधानानि अपंचीकृतानि आकाशादीनि पंचापि भूतानि प्रत्येकं द्विधा विभज्य तथा एक एकम अर्धम चतुर्धा विभज्य स्वार्धभागम विहाय इतर भूत अर्धभागेषु संयोजनम पंचीकरणम। इसका नाम हो गया पंचीकरण। आप लोगों को पढ़ना है तो एक पंचीकरण बहुत छोटी पतली सी पुस्तक है, उसको भी पढ़ लेना, मालूम पड़ जाएगा। एवं कृते पंचापि पंचीकृतानि भवन्ति। जब ये पंचीकृत हुआ, सबको मिला दिया आधा आधा करके, फिर उसमें इसके द्वारा क्या उत्पन्न हुआ? तो बोले ब्रह्मांड, ब्रह्मांड उत्पन्न हो गया, जिसके अंदर चतुर्दश भुवनानि, उस ब्रह्मांड में कितने भुवन हैं? 14 भुवन, 7 नीचे 7 ऊपर। उसमें भी अंडज, जरायुज, स्वेदज और उद्भिज, ये जो चार प्रकार के स्थूल शरीराणी अन्नादि भोग्य वस्तुनी च जातानी, जैसे हम लोगों का शरीर उत्पन्न हुआ, इस शरीर को चलाने के लिए खाने पीने की व्यवस्था भी तो उसने की। कैसे ये शरीर चलेगा? क्योंकि भागवत में द्वितीय स्कंध में जब ये प्रसंग आता है, ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ तो कुछ खाने पीने का था नहीं, तो ईश्वर को ही खाने के लिए दौड़ा। बोले मैं कहां जाऊं, कहां रहूं, मुझे खाने के लिए क्या मिलेगा? तब वहां पर ये सब उत्पन्न किया है, और अनादि काल से ये व्यवस्था बनी हुई है। हमारे पूर्वज भी इसी मुंह से खाते थे, हम लोग भी इसी से खा रहे हैं। कुछ चेंज करने की इच्छा तो नहीं है? इच्छा होने पर भी कर नहीं सकते, ईश्वर की ऐसी व्यवस्था बनी हुई है। तो अंडज, अंडे से उत्पन्न होने वाले को अंडज बोलते हैं। जरायुज, कुक्षी, कोख के द्वारा उत्पन्न होने वाले, जैसे हम लोग हैं, स्वेदज पसीने से उत्पन्न होने वाले और उद्भिद जमीन को फोड़ करके निकलने वाले जो भी ये प्राणी है उनके खाने के भोग्य वस्तु भी उत्पन्न हुए। इस स्थूल शरीर में जीव और ईश्वर का जो अवस्थान है जो रहना है इसी का नाम है जागृत अवस्था। इदम स्थूलम एव अन्नमय कोश, इसमें केवल कौन सा कोश है? अन्नमय कोश। अन्नमय कोश स्थूल शरीर में, सूक्ष्म शरीर में, प्राण में, मनो में और विज्ञान में, और कारण शरीर जो है उसमें आनंद में। तीनों अवस्था, तीनों के सब ये सब एकदम ध्यान में रखना है। आगे बहुत अच्छा लगेगा यदि ये सब समझ कर रखेंगे तो, और नहीं तो फिर कहेंगे क्या बोल रहे हैं। इदम कारण शरीरम सूक्ष्म शरीरम स्थूल शरीरम च प्रत्येकम व्यष्टि समष्टि भेदेन द्विविधम। ये जो तीनों शरीर है, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर, ये भी दो दो हैं, व्यष्टि रूप में और समष्टि रूप में। कल बताया था समष्टि रूप से ईश्वर समस्त अज्ञान का अवभाषक है और हम लोग जो जीव हैं अपने व्यष्टि रूपी अज्ञान के अवभाषक हैं, प्रकाशक हैं। अपने अज्ञान को हम सब जानते हैं। व्यष्टि और समष्टि का मतलब क्या होता है? तो यहां वासुदेव यति जी बोल रहे हैं वनम ग्राम इत्यादि समष्टि, जंगल है, गांव है, इसका नाम है समष्टि, सब मिला हुआ है। लेकिन वृक्ष गृहम, जंगल में एक एक पेड़ को जब गिनाएंगे तब इसका नाम पड़ेगा व्यष्टि। इसलिए उसी से हम लोगों के महात्माओं में नाम पड़ गया समष्टि भंडारा और व्यष्टि भंडारा। जब सबको बुलाओ तो समष्टि, और जब केवल चुने हुए लोगों को बुलाना है, सेलेक्टेड लोगों को, तब नाम पड़ेगा व्यष्टि। वृक्ष वृक्ष गिनाओगे व्यष्टि, लेकिन सीधे वन बोल दिया तो समष्टि। एक घर दो घर गिनाया व्यष्टि, पूरे गांव नगर गिना दिया तो समष्टि। इत्यादि व्यष्टि एवं सर्व शरीरम समष्टि एक शरीरम व्यष्टि, सभी का शरीर हो गया समष्टि लेकिन एक एक शरीर हो गया व्यष्टि। तत्र समष्टि उपाधिक ईश्वर, समष्टि के उपाधि वाला कौन है? ईश्वर। और व्यष्टि के उपाधि वाला है जीव। तत्रापि कारण समष्टि समष्टिया समष्टि ईश्वर कारण व्यष्टिया जीव। कारण व्यष्टि अर्थात व्यष्टि के जो कारण है वो जीव है, और समष्टि के जो कारण है वह ईश्वर है। ये ईश्वर, हिरण्यगर्भ और विराट, यही आएगा ना, जागृत अवस्था में विराट होते हैं, वैश्वानर बोलते हैं, ये ब्रह्मा जी का स्वरूप है। स्वप्न अवस्था में जो हिरण्यगर्भ है वो विष्णु के स्वरूप है, और सुषुप्ति अवस्था में जो प्राज्ञ है, जो ईश्वर है, रुद्र संहार के स्वरूप, संहारित तो होता है, प्रलय होता है, सो जाते हैं, और सोने के बाद भी बिस्तरे पर लेटे हो जब तक नींद ना आ जाए, बिस्तरे पर ना चले जाओ तब तक लगता है कि शरीर में थकान बनी हुई है। इस तरह से सोने के बाद भी और जागृत अवस्था में भी खाना पीना जो चल रहा है, पालन करने वाले कौन हो गए? विष्णु। भागवत में एक जगह ऐसा प्रसंग आया, आप लोगों ने कथा सुनी कि नहीं मालूम नहीं, जब उद्धव जी देवगुरु बृहस्पति से भगवान श्री कृष्ण क्या चीज है भागवत के बारे में जो श्रवण किया था, उसी के बाद तो भगवान ने सोचा इनको इतना ज्ञान हो गया तो क्यों इनको गोपियों के पास भेज दें, और मित्रता कर लिया, और उद्धव जी को थोड़ा अपने ज्ञान का अभिमान भी था। लेकिन अभिमान आने के बाद भी किस तरह से उस अभिमान को दूर किया है उद्धव जी ने, ये आप लोग जानते हो? कहां पर आता है प्रसंग? हाँ, नहीं नहीं वो सब अलग चीज है, ना ना कहीं नहीं, आप लोग आगे पढ़े नहीं सुने नहीं हो, इतने सुनने के बाद भी यदि आप लोग पूरा जान जाओगे तो भागवत फिर कौन करेगा। तो जब परीक्षित के साथ उद्धव जी की भेंट हुई, परीक्षित से उद्धव जी कहने लगे, अभी चल रहा है ना अष्टाविंशतित में कलियुगे कली प्रथम चरणे, वो 28वां द्वापर का अंत हो रहा था। बोले इस द्वापर के अंत में तो सबको भगवान कृष्ण ने स्वयं ही मुक्त कर दिया, अब जो बचे खुचे रह गए लोग उनका उद्धार कैसे हो, इसके लिए ये काम भगवान ने उद्धव जी को सौंपा था। 28वें द्वापर का अंत होने को चला, कलयुग का आगमन होने वाला है। उद्धव जी ने राजा परीक्षित से कहा कि मैं सबको भागवत सुनाऊंगा तो कली आकर के बीच में विक्षेप करेगा, इसके लिए तुम दिग्विजय के लिए जाओ। परीक्षित बोलते हैं ठीक है, एक बार तो जल्दी में बोल दिया ठीक है, फिर सोचते अरे सब लोग भागवत सुन के कल्याण प्राप्त करेंगे, मैं दिग्विजय में जाऊंगा, मेरा कल्याण कब होगा। उद्धव जी बोले चिंता मत करो, तुम्हें तो भगवान कृष्ण के ही स्वरूप सुखदेव जी आकर के उपदेश देंगे, ये काम उनके ऊपर छोड़ दो, तुम्हारे लिए तो पहले से परमात्मा ने व्यवस्था करके रखी है, अभी जो बाकी प्रजाओं का उद्धार करना है, जो काम हमें सौंपा गया है उसमें कली आकर के विघ्न न डाले, ये काम तुम करो, तब जाकर के जाते हो दिग्विजय के लिए। राजा परीक्षित उद्धव जी के कहने से, अब उद्धव जी के मन में जो ज्ञान आदि का अभिमान है, जो अभी बताया तीन गुणों से हम लोगों की उत्पत्ति हुई है, इसलिए हम लोगों के अंदर भी ये तीन गुण, कभी मन हल्का होता है, कभी लगता है ये कर लूं वो कर लूं, कभी एकदम भारी हो जाता है, लगता है सो जाऊं कुछ नहीं करना है, इन्हीं तीनों गुणों में हम लोगों का जीवन बरत रहा है। ज्ञान हो गया तो फिर गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते, वो बात अलग हो जाएगी, लेकिन उससे पहले तो उसका पूरा प्रभाव तो पड़ता ही है। तो ये बात जब ब्रह्मा जी विष्णु और शंकर इन तीनों ने भी भागवत कथा जो सुनी है ना, अलग अलग समय निकाल करके, मतलब रजोगुण के प्रतीक जो पालन करने वाले विष्णु हैं, वे भी रजोगुण के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए एक महीने तक भागवत की कथा भगवती लक्ष्मी को सुनाते रहे, स्वयं बन गए वक्ता, लक्ष्मी को बना दिया श्रोता, और जब लक्ष्मी वक्ता बनती थी तो दो महीने कथा चलती थी। तो वहां शंका उठाई कि विष्णु ने एक महीने कथा की, लक्ष्मी ने दो महीने क्यों। तो जैसे यहां पर जिनको कोई काम नहीं है और हम 8:35 तक भी बोले तो उनको दिक्कत नहीं है, लेकिन जिसको कहीं भागना है तो चाहता है कि 8:29 में ये कथा छोड़ दे तो अच्छा है। तो भगवान विष्णु को सृष्टि का पालन करना था, इसलिए वो एक महीने से ज्यादा कथा नहीं कर सकते थे, जल्दी जल्दी निपटाना था, और लक्ष्मी जी को कोई काम धंधा था नहीं, इसलिए वो दो महीने तक करती थी कथा। पता है ये कथा नहीं सुनी आप लोगों ने, हाँ तो इसका एक्स्ट्रा फीस लगेगा मालूम है। ये सब जो है तो ब्रह्मा विष्णु और शंकर ने भी रजोगुण सत्वगुण और तमोगुण के प्रभाव न पड़े इसके लिए भागवत को किस ढंग से श्रवण किया है, ये स्कंद पुराण में प्रसंग आता है। स्कंद पुराण में 81,100 श्लोक है, सबसे बड़ा यदि पुराणों में कोई पुराण है तो वह है स्कंद पुराण, दूसरे नंबर में शायद पद्म पुराण आता है, पुराण आदि तो यहां तो 18 पुराणों का भी पारायण हो चुका है, बहुत अच्छा है। प्रेमपुरी तो एक आध्यात्मिक कल्पवृक्ष है भाई। कहने का मतलब यह है कि अब इन तीन गुणों के आधार पर कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, इसके समष्टि और व्यष्टि करके जीव और ईश्वर जो भेद नाम पड़ा, तो जागृत अवस्था में समष्टि अभिमानी जो विराट है वह ब्रह्मा जी के प्रतीक हैं। स्वप्न अवस्था में समष्टि अभिमानी जो हिरण्यगर्भ हैं वो विष्णु के प्रतीक है, और सुषुप्ति अवस्था में जो समष्टि अभिमानी ईश्वर है वह भगवान शंकर रुद्र के प्रतीक है। कितने इसी से अकार उकार मकार में चले जाओ, ओम जो बनता है, तो मांडूक उपनिषद आप सुनते हैं, मुंडक उपनिषद सुनते हैं, ओमकार आदि का जहां जहां वर्णन आया है, यही वासुदेव यति उस बात को दोहरा रहे। थोड़ा सा इसको सरलता करके समझा दिया जिससे मन में कोई संदेह न रह जाए। तो ये तीन मूर्ति बन गए तीन गुणों के आधार पर, त्रिमूर्ति सत्व रजस तमो गुण उपाधि भीर ब्रह्म विष्णु रुद्र रूपेण सृष्टि स्थिति संहारान करोती। सृष्टि करते हैं, फिर स्थिति पालन करते हैं और संहार करते हैं। ब्रह्मणो विराट पुरुषे अंतर्भाव, ब्रह्मा जी जो है विराट पुरुष के अंदर ब्रह्मा जी का अंतर्भाव हो जाएगा। विष्णु हो हिरण्य गर्भे अंतर्भाव, रुद्रस्य च ईश्वरे अंतर्भाव एवं प्रपंच उत्पत्ति। इस प्रकार से इतने बड़े प्रपंच की उत्पत्ति हुई। अयम एव अध्यारोप, इसका नाम क्या है? अध्यारोप। आप लोग बहुत बार सुने अध्यारोपापवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचते, ये सब के सब अध्यारोप किसका कार्य है? तो विक्षेप शक्ति का कार्य है। विक्षेप शक्ति के साथ इसका कितना संबंध है? जिस अज्ञान को हम अभी जानने की कोशिश कर रहे हैं तभी तो इसको हटाने की कोशिश करेंगे, और जिसके लिए सबसे प्रारंभ में बात कही गई थी है अंतिम में आने वाली बात, लेकिन हमने शुरू में कह दिया, आत्मा के ऊपर आए हुए आगंतुक दुखों का जो कारण है शरीर की प्राप्ति। शरीर की प्राप्ति होती है कर्मों से, कर्म के उत्पत्ति होती है राग आदि से, राग आदि उत्पन्न होते हैं अभिमान से, अभिमान होता है अविवेक से, अविवेक होता है अज्ञान से। इस अज्ञान की जो कार्य है, अध्यारोप का मतलब अज्ञान और अज्ञान का मतलब विक्षेप शक्ति, ये सब पर्याय वाची मिलते जुलते शब्द हैं। तो विक्षेप शक्ति के द्वारा इतना बड़ा जो प्रपंच हुआ जिसमें त्रिमूर्ति के रूप में ब्रह्मा विष्णु और रुद्र बनकर समष्टि के अभिमानी और व्यष्टि के अभिमानी 84 लाख योनि में जितने भी जरायुज अंडज स्वेदज और उद्भिज का नाम गिना करके उन सब के लिए भोग्य वस्तुओं को उत्पन्न करके बता दिया गया कि ये सब के सब अध्यारूप के अंतर्गत आता है। यदि सो गए तो अपवाद फिर कौन करेगा? जागते रहोगे तो फिर इसके ऊपर अपवाद की भी बात चलेगी। अब आवरण शक्ति के अंतर्गत क्या क्या बातें आएंगी ये प्रसंग सुनाएंगे कल। ओम।